जितने जिंदगी के दिन हम गुजार रहे हैं ये सब चांसेस हैं। हर दिन और हर साल जो गुजरता है ना, हमारे चांस खत्म होते जा रहे हैं। अगर हमने उसके अंदर कुछ नहीं किया तो वो चांस खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला हमें एक और साल दे देता है, फिर वो भी चांस खत्म हो जाता है, फिर एक और साल मिल जाता है, फिर वो भी चांस खत्म हो जाता है। इसी तरह एक दिन सब चांसेस खत्म हो जाएंगे और फिर कभी भी चांस मिलेगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाएगा, तुम्हें क्या इतनी उम्र नहीं दी गई थी, इतना टाइम नहीं दिया गया था, इतनी जिंदगी नहीं दी गई थी? अगर तुमने उसमें समझना होता तो समझ सकते थे, इनफ था तुम्हारे लिए। और खास तौर पे जिस इंसान को 60 इयर्स की उम्र मिल जाए तो कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा 60 साल की उम्र वाले कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। जब ये मैं तो ये सोचती हूँ कि जब ये कहा जाएगा तो कितनी हैबत होगी उनको जिनको 60 साल की जिंदगी मिली, इसलिए क्योंकि अब एक्सक्यूज उनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही वो उम्र है हदीस में आता है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी, जिस उम्र में अगर तुमने नसीहत पकड़नी होती तो पकड़ लेते। लेकिन आज देखें 80 साल का बूढ़ा भी उठ के वो भी ऐसे ही करता है जैसे मैं तो अभी जवान ही हूँ, बल्कि लोग 60 साल का हो जाए तो वो अपने आप को कहता है मैं तो 50 का हूँ, मैं तो अभी 60 का हुई नहीं। अपने अंदर तो पता है लेकिन अपनी उम्र छुपाते हैं हम, अपने आप को धोखा देते हैं। अभी तो मेरी कोई उम्र ही नहीं है, अभी क्या उम्र है? आपको पता है कयामत की निशानियों में से एक निशानी है बूढ़े भी जवान बनेंगे। आजकल इसको बूढ़े को भी देख लो तो वो भी कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो अभी उम्र ही कुछ नहीं है। वो अभी जवानों की तरह पहनना ओढ़ना, जवानों की तरह के मशागिल, जवानों की तरह के शौक उसने भी पाले में, उसको आगे की नहीं फिक्र है कि मेरा तो अब कब्र में टांगे हैं। वो कहता है मैं भी उसी तरह जीऊं जैसे जवान जीते हैं। तो बूढ़ा भी बूढ़ों की तरह नहीं एक्ट करेगा, बूढ़ा भी जवान बन बन के दिखाएगा। तो 60 साल की उम्र तो खैर बुढ़ापे की नहीं होती उम्र, अच्छा भला होता है इंसान, लेकिन उसको तो हम सोचते हैं अभी तो मेरी कोई उम्र ही नहीं है। बूढ़ों को नहीं समझ आ रही तो जवानों को क्या? ये 60 साल की उम्र भी एक तरह से पूरी ताकत की उम्र है। उसमें इंसान को इस उम्र को पाने वाले के तो सारे ही एक्सक्यूजेस खत्म हो गए। इसके अलावा भी उलमा कहते हैं कि जिसको भी अकल शऊर मिल गया, पूरी अकल समझ थी उसके अंदर, पूरे उसके यानी एक होती है ना ऐसी उम्र जिसके अंदर इंसान की पूरी समझदारी की उम्र आ जाती है, उसको बहुत से मौके मिल जाते हैं। ये मतलब नहीं यहाँ पे कि जी 60 वालों का तो कोई है, हम तो जी अभी 60 साल के हुए नहीं, चलो जी हमें तो कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं है, हम तो अभी मजे करें। नहीं, जो 60 साल की उम्र तो एक बताई गई कि उसका तो बिल्कुल ही एक्सक्यूज खत्म हो गया, लेकिन जिसको भी मौका मिल गया, वो अकल और शऊर आ गई उसके पास, वो ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था। वो ये नहीं कह सकेगा, हम तो वेट करते हैं ना कि भाई हम उस वक्त ये नेकियां करेंगे जिस वक्त के हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे सारे कामों से हम फारिग हो जाएंगे, ये सोचते हैं। और बाज लोगों को तो उस उम्र में पहुंचकर भी होश नहीं आता, उस उम्र में पहुंच के भी उनकी वही काम रहते हैं, वही वेस्ट ऑफ टाइम। अरे अब तुम्हारे पास कितना टाइम रह गया कि अभी भी तुम वेस्ट करने से नहीं हट रहे, अभी भी वही सोशल मीडिया पे बैठे हुए, अभी भी वही फोनों के ऊपर अपना टाइम गुजार रहे हैं, अभी भी फिल्मों के आगे बैठे हुए, अभी भी वही ड्रामों की किस्तें खत्म नहीं हो रही, अभी भी वो नॉवल और अफसाने खत्म नहीं हो रहे, बल्कि अब तो ज्यादा फरागत है, अब तो ज्यादा ही नॉवल अफसाने और ड्रामे और सोशल मीडिया शुरू हो गया, क्योंकि अब तो फरागत ही फरागत है, पहले तो कोई काम होते थे। नहीं, वो फरागत के वक्त को भी नहीं ये सोचते कि ये तो मैं अब तो अपनी आखरत बना लूं, अभी भी उनके पास वक्त नहीं है अपनी आखरत के लिए अमल करने के लिए, तो फिर उज़र खत्म हो गए ना। लेकिन ये वो टाइम होता है जब इंसान की समझ ले रिटायरमेंट का एक वक्त होता है ना, अब इंसान फारिग हो गया जॉब वगैरह से भी, बच्चे भी इस उम्र में आके ना बड़े हो जाते हैं, उनकी भी कुछ छोटे छोटे बेबीज नहीं है कि उनको आपको देखना है, उनकी भी शादियां वादियां हो जाती हैं इस उम्र तक आते आते इंसान के। लेकिन अभी भी अगर आके कोई समझे ना तो फिर कौन सी चीज उसको समझाएगी। पहले तो बड़े एक्सक्यूजेस देते थे कि जी मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं, बच्चे को देखना, रात को सोने नहीं देता बच्चा, और उसके बाद उनकी भाग दौड़, उनको स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, होमवर्क करा रहे हैं, मेरे पास तो ये एक्सक्यूज ये एक्सक्यूज। अब क्या है, उस वक्त भी अगर इंसान ना समझे, समझे ना, संभले ना, तो कब संभलेगा? फिर तो अब कोई और मौका नहीं रह जाता। तो इसलिए इंसान तब तो समझ जाए, और फिर समझ भी एक आने शुरू हो जाती है अपनी, पता चल रही है कि कुव्वतें अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, कमजोरी आ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, फिर भी इंसान ना समझे तो अल्लाह अकबर। तो जो जवान है या जो बूढ़े हैं, सबको ही इनसे समझना चाहिए। जो इंसान को पता नहीं होता इस उसमें आके इंसान सोचे कि अगर मैं 60 साल का हूंगा तब काम करूंगा, क्या पता उस वक्त कितनी हिम्मत हो इंसान की। जब जिंदगी की शाम हो रही हो उस वक्त का इंतजार नहीं करना कि उस वक्त मैं अपनी आखरत का सूरज चढ़ाऊंगी, उस वक्त मैं नेकियों का सूरज चढ़ाऊंगी। आपकी जिंदगी की शाम हो रही है, अब आपको नेकी करने का ख्याल आ रहा है, तो सारी जिंदगी आपने क्या किया फिर? तो चलो जिनको उस वक्त भी ख्याल आ जाए तो गनीमत है, जिनको तब भी ना आया तो क्या। तो जो अभी जवान है वो उस वक्त का ना वेट करें कि उस वक्त मैं आखरत के लिए कमाई करूंगी, जिस वक्त ना नजर आएगा कि तिलावत कर सके, अब नजर ही नहीं आता, जहन ही नहीं काम करता, अब क्या करें, रोजा भी नहीं रख सकती क्योंकि अब मुझे शुगर हो गई, अब क्या करूं, जमीन पे सजदा नहीं दिया जाता क्योंकि घुटने मेरे खराब हो गए, कमर नहीं साथ देती। उस वक्त का इंतजार करेंगे तब नेकी करेंगे, तब आखरत बनाएंगे, तब लंबे सजदे किया करेंगे, तब क्याम किया करेंगे। गोलियां खा के सो जाते हैं तो रात को आंख ही नहीं खुल पाती। तो उस वक्त का इंतजार ना करें, अभी करें, चाहे जिस भी मसरूफियत में आप हैं, चाहे जितने भी काम आपके हैं, ऐसे वक्त का ना वेट करें। खास तौर पे इस वक्त जो हमारी हिम्मतें हैं, जो हमारे हालात है ना, इनके अंदर तो अल्लाह ही माफ करे कि हमारे पता नहीं बुढ़ापा भी आएगा या नहीं, और हम तो जवानी में ही बूढ़े हो चुके हैं जब हमारी हिम्मतें ही नहीं है, कुव्वतें ही नहीं है। तो उस वक्त के क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वक्त कितनी हिम्मत होगी? तो एक तो उनको ये कहा जाएगा कि तुम्हें तो हमने इतना टाइम दिया था, टाइम हर जो दिन गुजर रहा है वो हमारा एक्सक्यूज काटता जा रहा है, याद रखें, इसको वेस्ट ना करें। और दूसरी क्या चीज है जो उसको कही जाएगी, वजाकुम नजीर, तुम्हारे पास नजीर भी तो आया था। नजीर कौन? आपके पास कोई नजीर आया है? कौन है आपका नजीर? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे पहले नजीर, उसके आपके बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो आपके बाद जो भी कोई नजीर है, खबरदार करने वाला है, वो आपके टीचर हों, वो आपके कुलीग में कोई हो, कोई आपके माँ बाप हों, जो भी आपको नसीहत करते हैं, खबरदार करते हैं, वो नज़ीर है। उलमा ने 5 अकवाल बयान किए हैं नज़ीर के 5 चीज़ें हैं जो नज़ीर हो सकती हैं। तो पहली तो ये मैंने आपको बता दी कि आपके पास डराने वाला आ गया, तुमने खुद ही सुनी अनसुनी करती, तुमने उसकी बात ही नहीं मानी, तुमने उस पैगाम पहुंचाने वाले को, पैगाम आया था आपके पास, अब आप अपना, चलो कोई किसी के पास कोई भी नहीं आया, ना कोई टीचर है, व्हाट्सएप खोलते हैं उसके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाती है आपके सामने जो नज़ीर है, जो वॉर्न कर रही है आपको, जो अकल ठिकाने ले आती है, फिर भी बस सुना और बंद कर दिया, या सुना ही नहीं, ये बातें हम नहीं सुनते, हम डर जाएंगे, ये तो डरावे हैं, बस ये तो हर बार डराते ही रहते हैं, ये कह के बंद कर दिया। ऐसे होता है ना, नहीं सुनना चाहते लोग, नहीं क्लासेस अटेंड करना चाहते, नहीं ऐसी मजलिसों में बैठना चाहते जहां पे हमारा कोई मजा ना खराब हो जाए, हमें वार्न ना कर दिया जाए, वार्निंग दे दी जाएगी तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। नंबर 2, उलमा कहते हैं बुढ़ापा, सफेद बाल आने, सफेद बाल हम आने कहाँ देते हैं, हमें सफेद बाल नजर आएंगे टेंशन हो जाएगी वे बूढ़े हो रहे हैं तो इनको काला कर लो, बिल्कुल कलर करने में कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बुढ़ापा या सफेद बाल आने ये भी एक नजीर है, हम इसको एक्सेप्ट करें, ये कहने का मकसद है कि इसको एक्सेप्ट करें कि हमारी उम्र गुजर गई, अब हमें आगे की फिक्र करनी है, जवानी ढल रही है अब। असल में एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर नहीं आती ना तो फिर हम कुछ आगे के लिए फिक्र भी नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट तो पहले करें ना, नहीं हम कहते नहीं तो मैं तो जवान हूं, मैं तो जवान हूं, अभी मेरी जवानी है, तो उससे हम उस फेज से ही नहीं निकलते कि अपने आप को रियलिटी दिखाएं। तो जो बुढ़ापा है वो भी नजीर है कि अब तो बुढ़ापा आ रहा है, वो तो अब तो आगे की फिक्र कर लूं, तो यानी ये नजीर भी हमने तुम्हारे पास भेजा था। फिर नंबर 3 उलमा कहते हैं बुखार, बुखार से मतलब ये है कि बीमारियां जो आती हैं, आप देख लेना जब इंसान को, किसी को शुगर हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, किसी को कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये क्या है सारी है? अब ये पता चल रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जिस्म साथ देना छोड़ रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं, कानों से अब सुना नहीं जा रहा, अब ना घुटने चलते नहीं है, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि सामान जाना शुरू हो गया है, अब इसके बाद इंसान खुद भी चला जाएगा, जब बीमारियां आना शुरू हो जाएं, बीमारियों का अटैक होना शुरू हो जाए, तो यही मतलब है ना क्रॉनिक ऐसी बीमारियां कि अब आगे आगे तो फिर डाउनफॉल ही है, कोई अब तो नहीं जाना। नंबर 4 अजीज व करीब की मौत, जब करीबी लोग हैं, कोई दोस्त है, कोई घर वाले में से कोई है, रिश्तेदारों में से कोई है, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जा रहे हैं, उसकी मौत की खबर आ गई, उसकी मौत की खबर आ गई, तो ये भी नजीर है कि अब तो किसी दिन तुम्हारी भी बारी आ जानी है, ये भी नजीर है ना। अब ऐसे तो नहीं होगा कि बाकी सारे तो जाते रहे, मैं तो सिर्फ लोगों की ताजियत करने ही जाती रहूंगी, एक दिन तो मेरी भी ताजियत हो रही होगी, मैं दूसरों के जनाजे अटेंड कर रही, एक दिन मेरा भी तो जनाजा होगा, ये नजीर है ना, ये हमें खबरदार करने के लिए है। लेकिन क्या होता है, लोगों की अमवात के ऊपर भी जाते हैं तो भी बंद संवर के जा रहे हैं, वहां पे भी जाते हैं तो दुनिया की बातें ही खत्म नहीं होती, उसको नजीर समझते ही नहीं अपने लिए, वहां पे भी जा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आप खाना कब देंगे, खाने खाने के लिए, तो हमने उसको भी पार्टी टाइम बना लिया। और नंबर 5 कामिल अकल, जब अकल कामिल हो, अकल समझ आ गई है, शऊर आ गया है, अच्छे भले आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये भी एक नजीर है कि अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि आगे क्या है, आगे इस दुनिया से जाना ही है और उसकी तैयारी करनी है। जमीन के ऊपर तो हमने महलात बनाए हुए हैं, जमीन के ऊपर तो लग्जूरियस घर बनाए हुए हैं, जमीन के नीचे के घर की भी फिक्र करनी है कि वो भी लग्जरी हो, वो भी जन्नत का बाग बन जाए, उसमें भी आराम हो, सिर्फ जमीन के ऊपर के घर की फिक्र ना हो, जमीन के नीचे के घर की ज्यादा फिक्र होने शुरू हो जाए, ये है कामिल अकल। तो 2 बातें बयान की गई यहां पे जो उनको कही जाएंगी कि अब तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जा सकता, इसलिए कि तुम्हारा एक्सक्यूज ही जो तुम कह रहे हो कि हम जाके वहां पे नेक अमल करेंगे, तुम्हारे तो एक्सक्यूज खत्म हो गए ना करने के, अमल ना करने के, क्योंकि तुम्हें तो इनाफ टाइम मिला, अगर तुमने अमल करना हो तो कर लेते, तुम्हें इनाफ नजीर तुम्हारे पास आए जो तुम्हें ये बताते कि अब तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, बुढ़ापा भी बता रहा है तैयारी कर लो, बीमारियां आ रही हैं वो भी बता रही है तैयारी कर लो, जो इधर उधर डेथ्स हैं लोगों की हो रही हैं वो भी हमें मैसेज दे रही है कि तुम भी तैयारी रखो, एक दिन तुम्हारी भी न्यूज आ जानी है, जो हमारी अकल है कामिल अकल हो जाना ये भी हमें बताता है, और वो 40 साल में तो कामिल अकल हो जाती है, ये भी बताती है कि अब आगे नीचे को ही जाना है, ऊपर नहीं है, और ये कुरान नजीर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीर हैं, और जो भी हमें पढ़ाने वाले सिखाने वाले हमारे असातिज़ा किराम उलमा ये सब नजीर हैं, फिर बिना हमने सुनना हो तो फिर एक्सक्यूजेस तो हम अपने खुद ही काट देते हैं ना, फिर वहां जाके नहीं ये कह सकेंगे अब हमें एक और मौका, सिर्फ एक और चांस दे दो, चांसेस तो आए थे तुम्हारे पास। تو ان کو کہا جائے گا بس چکھو یہ عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں کے لیے تو کوئی اب مددگار نہیں ہے کہ کوئی تمہیں یہاں سے نکالے, کوئی تمہارا چھٹکارا ہو. اب تو جہنم کی آگ ہی ہے اور کچھ نہیں تمہارے لیے. اب چکھو, اس کے اندر ہی رہو, تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالی جاننے والا غیب کا, آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی. یہ بات کیوں آئی فوراً؟ سوچیں, اس آیت کے بعد یہ بات کیوں آئی؟ یہ بھی پتہ ہے, ایک علم ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور دوسری آیت انٹر لنکڈ کیسے ہیں. اس کے بعد یہ کیوں, اس کے بعد یہ کیوں, بہت ہی گہرا علم ہے جس کے اوپر بھی علماء نے ورک کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کیونکہ وہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایک دفعہ بھیجا جائے, ہم جائیں گے وہاں پہ نیک عمل کر لیں, ویسے نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ عالم ہے غیب کا, اس کو پتہ ہے غیب, اس کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بھیج بھی دیا جائے تو پھر یہ وہی روش اپنا لیں گے جو کرتے رہے تھے, دوبارہ اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے چلتے تھے دنیا میں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ اس کے علم میں, جو باتیں ابھی نہیں ہوئی وہ بھی وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے, اس کو تو اس کا بھی علم ہے. جہنم میں ان کی کیا فریاد ہوگی اس کو یہ بھی پتہ ہے, جنت والے کیا کلمات بولیں گے, حالانکہ ابھی ہوا تو نہیں ہے نا, لیکن وہ جانتا ہے کیونکہ وہ غیب کا جاننے والا ہے. غیب ہر وہ چیز ہے جو انسان کے حواس سے, اس کے علم سے پوشیدہ ہے, اس کے حواس میں نہیں آ سکتی. ہم کسی آلے سے, کسی چیز سے جان نہیں سکتے کہ اس دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا, وہ غیب ہمارے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو بھیجا بھی جائے تو کیا یہ کریں گے, وہ تو سب کچھ جانتا ہے, اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, سینوں میں کیا خیالات اٹھتے ہیں, کون سی باتیں, کون سے ارادے, کون سی خواہشات, کیا جذبات, کیا تمنائیں, کیا کینے, کیا بغض, کیا حسد, کیا کیا چیزیں ہم نے سینوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, کس کے بارے میں کیا بات ہمارے دل میں ہے, وہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا, اس نے تمہیں پیدا کیا, اس کو تمہاری رگ رگ سے واقفیت ہے, تمہاری ہر بات کو جاننے والا ہے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, آپ سے قریب بیٹھا ہوا انسان نہیں جان سکتا آپ کے سینے میں کیا ہے, کون سا راز چھپا ہوا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سب کا جانتا ہے, جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں, ہر ایک کا. پہلے کیا ہوا, حال میں کیا ہو رہا ہے, مستقبل میں کیا ہوگا, اندر کے حالات, خیالات, جو بھی چیزیں ہیں, ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. عندہ مفاتح الغیب, اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ نجومیوں کے پاس نہ جائیں, ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ غیب کے حالات معلوم کرانے کے لیے, کیونکہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور نہیں غیب کو جانتا. یہ تو صرف ادھر ادھر کی باتیں لگاتے ہیں. اسی لیے نجومیوں کے پاس جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کسی ایسے انسان کے پاس جاتا ہے جو غیب کی خبروں کو سنانے والا ہو, تو اس سے کسی چیز کے بارے میں جب پوچھتا ہے تو 40 رات کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یعنی کسی کاہن نجومی ستاروں کو دیکھ کے پھر بتانے والا, لکیریں ہاتھوں کی دیکھ کے بتانے والا, شوق تو لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتائیں, لیکن سوچیں کہ اس نے 40 دن کی اپنی نمازیں گوا دی. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس نے اس کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, یعنی اس دین کا, اس قرآن کا, اسلام کا انکار کر دیا. تو یہ بڑا گناہ ہے کہ انسان ایسے جا کے لوگوں سے حالات پوچھنے کی کوشش کرے. اس لیے دل بھی آپ کا چاہ رہا ہو تو کبھی بھی نہ ایسے کرے, یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں, میں یہ سفر کروں یا نہیں, مجھے یہ جاب ملے گی کہ نہیں, میرا ویزا لگے گا کہ نہیں, یہ سب باتیں لوگوں سے جو پوچھنے بیٹھ جاتے یہ نہ ہو کہ اپنا ایمان گنوا دیں. उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लिख के लगाए होते हैं, आ जाए हम आपको बताएंगे, हाथों की लकीरों से हमने सारा ही पता नहीं बता देना, खुद उसको अपना पता नहीं होता कि उसकी मौत किस वक्त आनी है। वो नहीं एक बात आती है किसी के बारे में, कोई किसी को हाथ दिखाने के लिए, पता नहीं काहिन नजूमी था, उसे हिसाब लगवाने के लिए गया कि मेरी मौत कब आएगी, उसने कहा कि तेरी मौत ना इस वक्त आ जानी है, उसने कहा तूने मुझे ये बात बताई है, उसको बड़ा गुस्सा आया कि इस वक्त ही आ जानी तेरी मौत, तो उसने पकड़ के उसको कत्ल कर दिया, जिस जो नजूमी था उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि मेरी तो मौत जब आनी है तो तुझे तो अपनी मौत का भी नहीं पता था कि तेरी मौत कब आनी है, अपनी का तो देख लेता, दूसरे की तो बता रहे हो तेरी अभी आ जानी है। तो हम ये समझ लें इसके बाद कि अल्लाह ताला राजों को जानने वाला है, हमारी नियतों को जानने वाला है, हमारे दिल के हालात को जानने वाला है। तो दिल के अंदर जो चीजें हैं ना हमारे, जो हमने रखी हुई है संभाल संभाल के, उनकी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, उनके ऊपर डरने की जरूरत है कि अल्लाह ताला जान रहा है, क्योंकि कोई और तो नहीं जानता। अब आप अच्छे बने रहे, कोई किसी को भी नहीं पता दिल में आपके क्या है, लेकिन अल्लाह ताला को पता है। हु अल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ा फिल अर्द, और वो अल्लाह है जिसने तुमको बनाया जानशीन जमीन में। एक के बाद एक आने वाला होता है ना, उसको जानशीन कहते हैं ना, खलीफा कहते हैं, कि एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। तो उसने कैसे एक नस्ल को ख़त्म किया, दूसरी को ले आया, दूसरी को ख़त्म किया, तीसरी को ले आया। और ये भी मतलब है कुफारे कुरैश जो थे, उनको भी एक तरह की वार्निंग है कि देख लो पिछली जो कौमें थी अल्लाह ताला ने उनको हटा के अब तुम्हें लेकर आया, पिछली कौमें आद समूद ये इन सबको हटा के अब तुम्हारी बारी आई है जमीन में। फमन कफर अफ आले ही कुफरु, जिसने कुफर किया तो अपने लिए कुफर किया, उसका कुफर का वबाल तो उसके ऊपर, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसका नुकसान उसको ही है, वो किसी और के ऊपर नहीं ये डाल सकता। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक्त, और काफरों के लिए ज्यादा नहीं करेगा उनका कुफर अल्लाह के पास मगर नाराजगी में, अल्लाह ताला की नाराजगी बढ़ती ही है, जो कुफर करता है उसके ऊपर अल्लाह ताला की नाराजगी उसके कुफर की वजह से बढ़ती ही जाती है। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने जानशीन बनाया एक को दूसरे का, यानी एक नस्ल जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है, हर एक अपना अपना अमल करके इस दुनिया से जाता जा रहा है, कोई कुफर कर रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है, कोई दीन इस्लाम को थामता है और इसके ऊपर चलता है तो अपना फायदा करता है। और मुसलमानों के लिए भी इसमें खुशखबरी है कि आज का दिन जो तुम्हारे लिए मुश्किल है तो कल तुम खलीफा होगे, एक के बाद अल्लाह ताला दूसरे को ले आता है। कुफर से मुराद नेमतों की ना शुक्री भी है ना कदरी भी है, और कुफर वैसे भी जो कुफर है तो ना शुक्री करने का भी नुकसान खुद ही को है, नमाज नहीं पढ़ता तो अपना ही नुकसान कर रहा है, कोई गुनाह का काम कर रहा है तो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो मक्त है अल्लाह के हाँ मक्त है आता है वो, यानी काफिर अपने कुफर की वजह से अपना नुकसान करता जा रहा है और अल्लाह के हाँ उसकी अल्लाह ताला की नाराजगी को और ज्यादा अपने लिए बढ़ाता जा रहा है। वला यज़ीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, काफरों का तो खसारा ही बढ़ता है, वो और किसी चीज में नहीं इजाफा करते, क्योंकि दिन ब दिन जैसे उनकी जिंदगी, जैसे वो है ना हदीस के बेहतरीन आदमी वो है जिसको लंबी उम्र मिले और उसको नेक अमल करे, उसकी लंबी उम्र क्या है, उसकी नेकियों में इजाफा कर रही है, इसलिए इसी तरह काफिर की लंबी उम्र उसकी गुनाहों में इजाफा कर रही है, उसके कुफर में इजाफा कर रही है। और अल्लाह ताला का ये एक के बाद एक को भेजना ना खलीफा बनाना, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, सारे यहाँ पे जिंदा रहते इस दुनिया में तो यहाँ पे चलने की जगह ही ना होती, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक के अगर लोग यहीं पे पड़े होते, इसीलिए तो लोग फिर कोई बहुत ही बूढ़ा हो जाता है बेड रिडन हो जाता है तो कहते हैं अल्लाह ताला अब इसके ऊपर रहम ही कर दे, उनको पता है कि अब ये क्या एक मुश्किल ही हो गई ना, तो सोचे अगर उस जमाने के लोग आज तक होते तो फिर क्या हाल होता। कुल अराई तुम शुरकाकुम अल्लज़ीना तदउना मिन दुनिल्लाह, के ए नबी आप फरमा दें अराई तुम, क्या देखा तुमने शुरकाकुम अपने शरीकों को जिनको तुमने शरीक बनाया हुआ अल्लाह ताला के सिवा, तुम उनको पुकारते हो, इसका मतलब दुआएं करना पुकारना किसी को ये भी अल्लाह के अलावा किसी को करेंगे तो अल्लाह का शरीक बनाना है, समझ आई, ये ना कहें कि दुआ ही की है ना तो क्या हो गया, दुआ भी इबादत है, اور عبادت جس کی بھی کرو گے اللہ کے علاوہ تو اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا نا. ارونی مجھے دکھاؤ مجھے, ماذا خلقو انہوں نے کیا پیدا کیا, من الارضی زمین میں کوئی چیز بنائی ہے انہوں نے, ام لہم شرک فی السماوات یا پھر ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں, کوئی حصے داری کوئی اختیار کوئی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے. بندے جو کرتے نا وہ ایجاد کرتے ہیں لیکن انہوں نے تخلیق نہیں کیا ہوتا, انہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں, تو انہوں نے کیا پیدا کر دیا. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من, کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس میں کوئی دلیل ہے, کوئی لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے فلانے کو اپنا شریک بنایا ہوا ہے, خود بتائیں نا, خود بتائیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا, اس کو اپنا شریک بنا لیا, یا زمین اور آسمان میں اس کو بھی پارٹنر بنایا ہوا ہے یا اس کو اختیارات دیے ہوئے. یہ کہاں سے لے کر آئے کہ جی غوث اعظم ان کو کہا جاتا ہے, یہ فریاد رس بڑے فریاد رس, غوث کا مطلب فریاد رس, یہ فریادیں سننے والے, تو فریادیں سننے والے ان کو بنا لیا تم نے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ غوث ہے ان سے جا کے فریادیں کیا کرو. داتا دینے والا, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی دینے والا ہے, میں نے اس کو بھی اختیار دیا ہوا کہ یہ بھی دیا کرے لوگوں کو. جن جن کے بارے میں لوگوں کے عقائد ہیں بتاؤ کوئی کتاب کوئی دلیل تو لے کر آؤ, کوئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے اوپر سلطنت دے دیا, وہ پانیوں کے اوپر ان کا اختیار ہے وہ ہی کرتے ہیں, کوئی قطب ابدال کوئی یہ ساروں کو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں, یہ بھی تمہارے کام کریں گے تم ان سے بھی مانگا کرو. کدھر ہے کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں سے لا کے بتا دے, کوئی دلیل نہیں, دلیل سے بات ہونی چاہیے نا, قرآن ہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے, تو اس میں تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی فلاں آپ نیک لوگوں کی قبروں پہ جایا کرو اور ان سے بھی مانگا کرو. یہاں پہ تو آ گیا سورہ فاطر میں کہ قبروں میں تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, پھر کس کو جا کے سنا رہے ہو, کس سے فریادیں کر رہے ہو, کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟